नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद 18वां अध्याय, टोटल 1, 2, 3 श्लोक हैं। हम पहले 1 और 2 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर। मैत्रेय उवाच इत्थम पृथुम अथम पृथुम अभिश्रूया उष प्रस्फुरिदारदम पुनराहवनी भीत संस्थाभ्यात्मनम आत्मना। तीन नंबर है, खाली 1 और 2 हम पढ़ लेंगे फिर तीसरा। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे विदुर जी से कहा कि हे प्रिय विदुर, उस समय जब धरती माता ने अपनी प्रार्थनाएं अर्पण की, राजा पृथु शांत नहीं हुए थे और राजा पृथु को क्रोध के कारण उनके होठ थरथर कांप रहे थे और धरती माता बस घबराई हुई थी, तो उन्होंने निश्चय किया राजा को समझाने का। अगले श्लोक में है कि धरती माता कहने लगी, हे राजन, अपने क्रोध को शांत करिए और मैं जो निवेदन कर रही हूँ वो सुनने का प्रयास करिए। मैं बहुत दीन हूँ, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सब स्थान से अच्छी चीजों को ग्रहण, ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। जैसे एक भंवरा होता है, वो अलग अलग फूलों से अलग अलग शहद ग्रहण करता है। और फिर हम आज के श्लोक पे आ रहे हैं, जो तीसरा श्लोक है। अस्मि लोके अथवा मुष्मि मुनिभिस्तत्वदर्शिभि दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। अस्मि लोके अथवा मुष्मि तत्वदर्शिभि दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। अस्मिन् लोके अथवा मुष्मि मुनिभिस्तत्वदर्शिभि दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च श्रेय प्रसिद्धये। जीवन काल में अथवा या अमुष्मेन अगले जन्म में मुनि भी मुनियों द्वारा तत्व सत्य दर्शी भी दर्शन कर चुकने वालों के द्वारा दृष्ट्वा संस्कृत योगा विधियां प्रयुक्ता काम में लाई गई च भी उमताम मनुष्यों के श्रेय लाभ प्रसिद्धये प्राप्त करने में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विधियों का संस्तुति की है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनि और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश को श्रुति कहते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है उसको स्मृति कहा जाता है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति और स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उन्हें इस आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत बना मानता है किंतु श्रुति और स्मृति के संदर्भ का ग्रहण नहीं करता तो वो सिर्फ समाज के लिए परेशानी पैदा करता है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति और स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि भौतिक जीवन में भी करे। जहां तक मानव समाज का संबंध है मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों को भी जब मनुस्मृति कहा जाता है का पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए बल्कि उसे पिता पति और प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है किंतु हम देखते हैं कि ऐसे स्वतंत्र स्त्रियां संरक्षक के देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों श्रुति और स्मृति का आदेश का पालन करेंगे तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुख पूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया जिससे लोग भरमाए हुए हैं और संसार में न तो शांति है और न ही सुख है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जा रहा है किंतु वे भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेश का पालन न करने से वे भी दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द बताए गए हैं, एक है अस्मिन और दूसरा है अमुष्मिन। अस्मिन का मतलब है इस जीवन में और अमुष्मिन का मतलब है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वानों को भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं है, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है क्योंकि वे सब धूर्त और मूर्ख हैं। हरे कृष्ण, प्रोफेसर को बोल रहे हैं ये सब धूर्त और मूर्ख हैं, अतः कौन सा उपदेश दे सकते हैं, फिर भी अपने आप को विद्वान और प्रोफेसर बोलते हैं। इस श्लोक में अमुष्मिन शब्द बहुत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार बिताए कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को हम इसलिए शिक्षण देते हैं कि बाद में वो सुखी रह सके, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे मृत्यु के बाद शाश्वत और संपन्न जीवन को प्राप्त किया जा सके। इसीलिए बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है कि जो कुछ श्रुति और स्मृति में दिया गया है लोग उसका पालन करें जिससे जीवन का उद्देश्य सफल हो सके। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्र जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने जनता की संपन्नता के लिए अनेक विधियां की संस्तुति की है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को अपना भविष्य सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव जीवन की एक विशेषता है कि इस मानव जीवन में व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग करके भवसागर को पार कर सकता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो पशु योनि में भी आहार निद्रा भय और मैथुन रहता है, लेकिन मानव शरीर में तत्व जिज्ञासा की जा सकती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जानना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं क्यों इस भौतिक जगत में पीड़ित हूं, कैसे इस दुनिया से बाहर निकल सकता हूं, ये जानना ही मनुष्य जीवन का एक लक्षण है। आजकल अधिकांश जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं 90% से ज्यादा, उनका जीवन पशुओं की तरह है, क्योंकि उन्हें बस यही चिंता है कि किस तरह से शरीर का पालन किया जाए। शरीर का पालन वास्तव में प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप ही सभी का हो रहा है। जो जिस व्यक्ति को कर्मों में लिखा है उसकी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। मान लो आपके भाग्य में लिखा है कि आपके प्लेट में गुलाब जामुन आना है तो आ ही गए, अगर नहीं लिखा है तो आप प्लेट में रखेंगे भी और कोई चुरा ले जाएगा, तो क्यों अपने समय को इसके लिए बर्बाद करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति को अपना ज्यादा समय श्रवण और कीर्तन में लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम भगवान की कथाएं सुनने में लगते हैं और कीर्तन में लगते हैं, नाम जप में लगाते हैं, उतना ज्यादा संभावना है अंत समय में हम भगवान को याद कर सके। श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में बोलते हैं कि हमें ह्यूमन मिशन को सफल बनाना है। और सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है कि शरीर छोड़ते समय हमारे बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए है तो सफल माना जाएगा। कितना परसेंटेज हम साथ ले जा सकते हैं को मालूम है सरकारी नियम के अनुसार? माधव प्रभु, चाहे मिस्टर टाटा हो बिरला हो, आप बोलेंगे मेरे को 10% तो ले जाओ, अगले कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और हमारी विद्या, मान लो आपने बीए बीटेक एमटेक किया है, जैसे मैंने भी एमटेक पढ़ाई की अमेरिका से, लेकिन मृत्यु के समय से कोई लाभ नहीं। अब यमदूतों को बताओगे कि एमटेक हूं तो बोलो आ जाओ, बोलेगा आ जाओ, बहुत सारे से मेहमान आते हैं, ये बड़ी बड़ी विद्वता का कुछ लाभ नहीं है। या आप बताएं कि मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं राजनीतिज्ञ हूं, बिकॉज अगर राजनीतिज्ञ भगवान की सेवा में लगते हैं तो लाभदायक हो सकते हैं, नहीं तो पोस्ट की भी क्या फायदा। मरने के बाद कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या सड़क में झाड़ू लगाने वाला भंगी हो, सबका शरीर एक जैसा ही हो जाता है। अनिल तक जलाने के बाद ये राख स्पेशल है, क्योंकि मंत्री जी की राख है ना। तो इसमें क्या होगा? बाइबल में कहा गया है फ्रॉम डस्ट दाउ हैज कम एंड टू डस्ट दाउ शैल रिटर्न, मिट्टी से सब शरीर आया है वे मिट्टी में मिल जाना है। नहीं, शरीर के लिए कितना ख्याल रखते हैं, कितने देखभाल करते हैं, लेकिन नश्वर है। तो ऑफकोर्स जब तक ये शरीर में है तो थोड़ा ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि हम हमारे शरीर लाभदायक है, ये भगवान की सेवा में उपयोगी है। अगर शरीर का पालन नहीं किया जाए तो भी भक्ति करना मुश्किल है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही, जितना आवश्यक है वो भी भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहकर। एक जगह पर यूरोप में एक जगह है जहां पर एक क्रिश्चियन चर्च है, और चर्च के पास एक छोटा सा इलाका है जहां पे जो उस चर्च के पहले जो प्रीस्ट थे, जो पादरी थे, जो पहले जो पुजारी जो प्रीस्ट थे उस चर्च के, उन सब के जो शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर वहां दफनाए गए। क्रिश्चियन धर्म में दफनाते हैं, जलाते नहीं। तो सब जो प्रीस्ट हैं उनके दफनाए गए, लिखा गया ये फलाना फलाना व्यक्ति 1850 में जन्म लिया, 1920 में छोड़ दिया, इसके यहाँ पे दफनाए गए। सिमेट्री बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड। वहां पर बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है इंग्लिश में, व्हाट यू आर वी वर बिफोर, यानी जैसे आप हो वैसे हम भी थे, चलते फिरते थे, कार्य कर रहे थे। और दूसरा व्हाट वी आर यू विल बिकम, जैसे हम हैं वैसे आप बन जाओ, है ना। तो ये बहुत बड़ा सत्य है जो हम भूल जाते हैं। कल मैं महाभारत का एक भाग पढ़ रहा था जिसमें 5 पांडव काम्य वन में आते हैं, और काम्य वन के पास जो यहाँ ब्रज का ही भाग है वहां पर एक कुंड है, धर्म कुंड बोलते हैं उसको, जहां पर पानी पीने जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज पहले सहदेव को बोलते हैं जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, थोड़ा पानी लेने जाते हैं, और आवाज सुनाई पड़ती है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो नहीं तो तुम यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। तो प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीते उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नकुल की, भीम की, अर्जुन की भी। फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्या प्रश्न क्या है, और अनेक प्रश्न होते हैं, युधिष्ठिर महाराज सबका बहुत अच्छी तरह से जवाब दे देते हैं। और अंत में वो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर। आजकल लोग मानते हैं कि दुनिया में 7 बड़े वंडर है, नहीं 7 वंडर्स, उसमें ताजमहल एक है ना, 8 या 7 एनीवे, कि एक मूर्ख व्यक्ति एक किसी नश्वर शरीर के लिए बड़ा महल बना रहे, एक बड़ा आश्चर्य की बात है डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है वहां ताजमहल में, कल आश्चर्य होता है, कई बार भक्त भी बड़े खुशी देखने जाते हैं कि भाई ताजमहल देखना है, कि क्या देखना है उसमें, कि कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई पवित्र कोई साधु संत की समाधि हो तो बात अलग है, रूप गोस्वामी की समाधि है, सनातन की समाधि है, जो दुष्ट गोमांस खा रहे हैं उनकी समाधि देखने में क्या मजा मिलेगा। एनीवे ये तो जब युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय, कि हम देखते हैं कि सब प्राणी यमराज के दरबार में जा रहे, सबकी मृत्यु हो रही, हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई, परदादा की मृत्यु हो गई, और हमारे में से कई हैं जिनके पिताजी गुजर गए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो, दुख भी प्रकट करते हैं, वो ये व्यक्ति चले गए, वो क्या 70 साल के थे, मैं तो 50 का हूँ, बहुत टाइम बाकी है, और ये व्यक्ति चले गए, इनकी 60 थी लेकिन मैं तभी दूर हूँ, और ये 40 मेरे से ज्यादा कम उम्र वाले गुजर गए, उन्होंने थोड़ा दवाई ठीक से नहीं ली होगी इसलिए वो चले गए, मैं तो च्यवनप्राश खाता हूँ रोज, मैं प्राणायाम भी कर रहा हूँ आजकल, नाक दबा रहा हूँ, हवा अंदर बाहर कर रहा हूँ, इससे तो ये सब चीजें करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में इससे आयु नहीं बदलने वाली। आपकी अगर आयु लिखी है 80 साल या 70 साल या 50 साल, 50 साल 6 महीने 8 दिन 20 घंटे 2 मिनट और 15 सेकंड, तो उतनी ही आयु रहेगी, और उस समय अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते करते आयु खत्म हो जाएगी, आप आयु को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये तो हायर पावर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका जो लिखा होता है वो बदल नहीं सकते आप। मिस्टर चवन, चवन ऋषि ने चवन प्राश शुरू किया राइट, लेकिन चवन ऋषि कहां गए, वो भी मर गए। जब मृत्यु आनी है ना, हंसते हंसते बोल रहा हूं लेकिन ये बहुत गहरा सत्य। अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है तो आपको चैंटिंग में नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी बीमारी उसका में क्या है कि लोगों को जपा के समय नींद आती है। कोई भक्त मैंने देखा नहीं कि प्रसाद खाते समय नींद आए। आपने देखा है किसी को ऐसे खाते हुए महाप्रसाद लेकिन जप के समय नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि हमको लगता नहीं है कि एक्चुअली मृत्यु आने वाली। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ये 2 घंटे जब हम साधना करते हैं। और मैं वृंदावन के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन सब जगह पे कोई ना कोई केसेस होते हैं, दिखाई पड़ता है। मैं स्वयं भी इसका एक शिकार हूं कि कल रात को मेरे को थोड़ा नींद लेट हो गया था सोने में, जब मैं नींद आ रही थी। तो ये बीमारी जो है बहुत डेंजरस है। बाकी जो बीमारी है, कैंसर है, स्वाइन फ्लू है, देखो स्वाइन फ्लू नहीं भी हुआ तो भी आपकी मृत्यु आनी है। ये तो कुछ लोग हैं जिनको अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है इसलिए उसके ऊपर कैंपेनिंग करा रहे हैं लोग, और वो ठीक भी है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन मान लो स्वाइन फ्लू नहीं होता, कैंसर भी नहीं होता, तो भी मृत्यु तो होनी है। तो बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, ये सत्य है, ये प्रकृति का नियम है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु जन्मस्य च। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने चैंटिंग को सुधारना चाहेगा, जपा को, कि मुझे अंत समय राधा श्याम सुंदर का रूप सामने आना चाहिए, क्लियर, अनएडल्ट्रेटेड, प्योर, और कोई विचार नहीं आना चाहिए। मुझे धन, स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, परिवार सदस्य, बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं दिखाई पड़ना। अंत समय मुझे स्पष्ट गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ये हो सकता है कभी अभी से आप अभ्यास करें, अभी से आप 2 घंटे जप करते हैं तो बस सोचिए ये मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। मोबाइल्स को बिल्कुल स्विच ऑफ करना है। मान लो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हो, कल तो मुख्यमंत्री आए थे तो मंदिर में थोड़ा सा ये करना पड़ता है एडजस्टमेंट, लेकिन अगर मृत्यु का समय आए तो प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, प्रेसिडेंट आ रहा हो, इंद्र आ रहे हो, बोलना मेरा श्याम सुंदर के साथ अपॉइंटमेंट है, अभी राधा श्याम सुंदर के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट है, ये 2 घंटे है, ये सिर्फ कृष्ण के लिए। मेरा बैंक बैलेंस पूरा नष्ट हो गया हो, घर में झगड़ा हो गया हो, बच्चे छोड़ के चले गए हों, या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब के समय सोचना है कि बस ये एक पूरा मूवी चल रहा है, ये एक दुनिया एक पूरा सिनेमा घर है, एक ड्रामा चल रहा है, और ये ड्रामा में पर्दा बंद होने है किसी भी क्षण, और पर्दा बंद होने के समय कृष्ण को याद करना और अगले स्थान जहां कृष्ण चाहे वहां जाना, बस। बाकी सब डिटेल है कि मेरा क्या रोल है ड्रामा में, ड्रामा में मैं अमीर हूं, गरीब हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक पूरा महाड्रामा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्वयं श्याम सुंदर जी, राधा श्याम, भगवान राधा श्याम सुंदर, आप नहीं भगवान सब कंट्रोल कर रहे हैं ना, और बस पर्दे के बंद होने की तैयारी करनी है। उसके बीच में जो भी नाटक हो रहे होने, समझो ड्रामा में आपको गाली बुरे शब्द बोलते हैं तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं, ड्रामा में कोई बोलता है तू गधा है, मूर्ख है, हंसने हाँ बोलो बोलो और बोलो, सब लोग सुन रहे हैं, सुनने क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा में कोई आपको फूल माला पहनाता है तो ड्रामा में आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या बड़ी बात है? एक घंटे में तो पर्दा बंद होना ही है। ड्रामा में कोई आइसक्रीम खिलाता है या ड्रामा में कोई खिचड़ी खिलाए, ड्रामा में कोई भूखा रखे, ये छोटा सा ड्रामा चल रहा है। परिवार जीवन भी एक ड्रामा ही है। ड्रामा में आप पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, ड्रामा है। तो ड्रामा अच्छे तरीके से करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई बच्चे रोए तो बोला नहीं ये ड्रामा चल रहा है, चलो मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सुना ये ड्रामा चल रहा है। यू हैव टू एक्ट एज इफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट इन योर हार्ट यू शुड नो एवरीथिंग इज इनसिग्निफिकेंट। ऊपर ऊपर से ड्रामा में, जैसे ड्रामा में व्यक्ति रोल खेलता है, ड्रामा में कोई व्यक्ति गुस्सा दिखा रहे तो ऐसे दिखा रहे, अच्छे एक्टर वो होते हैं जो वास्तव में ऐसे लगता है कि क्रोधित हो रहा है, उसकी आंखें लाल भी हो सकती है, लेकिन मन में जानता है कि ये क्या, किसको डांट रहा हूं मैं, ये तो पर्दे के बाद तो हम दोस्त ही हैं ना। इस ड्रामा में फंसना नहीं है। अधिकांश लोग 90% से ज्यादा जो है इस ड्रामा में फंस जाते हैं। ये माया की बहुत तरकीब है। एक संत ने कहा है माया जो है एक बड़ी ठगिनी है, ठगिनी, ठग ठग जानते हैं, ठग ठग मतलब चोर जो धोखेबाज होते हैं। माया देवी हमें भुला देती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जीव कृष्ण दास ए विश्वास कोर लो तारे दुखन है। अगर आपको विश्वास हो जाए मैं कृष्ण का दास हूं तो कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है कि माया का पावर इतना ज्यादा है कि हम जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल फैमिली लाइफ के उदाहरण देखिए, मान लो किसी का विवाह हुआ है, 4-5 साल हुए हैं और उसमें 5 साल में 2 बच्चे हुए, तो अब उसके 2 बच्चे हो गए तो ऐसे आसक्ति होती है कि ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, मेरी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, ऐसा लगता है कि हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है। ये माया की ट्रिक है, उसको आसक्ति को त्यागना बहुत मुश्किल है। तो ये युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं कैसे प्रगति कर सकता हूं, हाउ कैन आई मेक रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो नारद मुनि बताते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको बार बार साधु संग करना चाहिए। ऑफकोर्स ये खाली गृहस्थ के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए भी है इंस्ट्रक्शन कि जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बार बार साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब जरूरी नहीं जो भगवे कपड़े में साधु हैं, जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हैं, उन भक्तों का संग करना। और उस संग में क्या करना, उस संग में हरि कथा और हरि नाम, मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमति। उस कथा में श्रवण करना, कीर्तन करना। बस जैसे मैं पहले जब अमेरिका में, आज से 25 साल पहले जब मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो एक मंदिर में, तो वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था, और एक एक भक्त मेरे साथ थे, बोले कल हम 4 भक्त मिलके सिनेमा देखने गए थे, पिक्चर देखने। तो मैंने बोला अरे ये तो अच्छा नहीं है, भक्तों को नहीं करना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम भक्तों के संग में गए थे। तो ये सत्संग हो गया, भक्तों के संग में गए, ये ना? तो ये हम किसी चीज को वैलिड नहीं बना सकते, ये ना? अगर आप किसी अभक्त के साथ भी जाके भागवत सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए सेवा कर रहे हैं, तो वो अच्छा चीज है। तो एक्टिविटी पे डिपेंड होता है, इस्कॉन में भी और बाहर भी हो जाता है। कई बार एक स्पिरिचुअल प्रजल्प होता है, आध्यात्मिक प्रजल्प होता है, हम बुरी बातें नहीं कर रहे लेकिन अननेसेसरी चीजें, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके व्यक्ति के दोष देखना, इसमें हमारा समय बीत जाता है। और आयु क्या है, मे बी 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 50-40-50 तो हमारे बीत गए, और बचे हुए में भी आधा समय सोने में और भोजन में चला जाता है। तो जो समय हम श्रवण और कीर्तन में लगा रहे हैं वही हमारा नित्य एसेट्स है, वही हमारा है जो मृत्यु के साथ हमारे साथ जाना है, बाकी सब यही रहना, बाकी सब यही रह जाना। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि व्यक्ति को बार बार हरि कथा सुननी चाहिए, बार बार। वही कहानी चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तब वो बार बार ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे। किसके पास जाते थे सुनने के लिए, गदाधर पंडित के पास तोटा गोपीनाथ मंदिर में, और बार बार वो कथा सुनते थे। फिर प्रहलाद महाराज की कहानी बार बार सुनते थे। ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बार बार सुने। कई बार लगता है अरे प्रभु जी अभी तो नई कहानी कुछ नहीं है, वही होने वाला है गौरलीला, हमें पता है चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण आएगा और भोजन स्वीकार बनाएगा, महाप्रभु जाके डिस्टर्ब करेंगे, ब्राह्मण बोलेगा हाय हाय, कुछ नया सुनाओ, कोई लेटेस्ट एडिशन नहीं, जैसे होता है ना i5 i6, है ना, नया वर्जन आना चाहिए, कोई है ना cc वर्जन 7, है ना, वही लीलाओं को बार बार सुने। और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आर्थिक आवश्यकताओं के लिए ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, प्रभुपाद परफेक्ट लेते ज्यादा नहीं बिताना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 8 घंटे गृहस्थ आश्रम के, वो भी शहरों में, वृंदावन में तो उससे भी कम में ही काम चल सकता है, वृंदावन में तो भगवान का धाम है। तो और उसके अलावा अगर परिवार के सदस्य बहुत फोर्स करें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, घर में हमारे पास 2 BHK और एक होना चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, थोड़ा ओवर टाइम करिए, तो क्या करना चाहिए, तो अगर पत्नी और बच्चे बहुत फोर्स कर रहे हो ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो क्या करना चाहिए, अगर आप बोलो नहीं तो बुरा लगेगा, तो क्या करना चाहिए? हाँ 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 हाँ, और कुछ करना नहीं चाहिए, बोले हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ना बोला तो बुरा लगता है, हाँ बोला तो मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए क्या बोलना है? हाँ 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 हाँ। ऐसे ही पत्नी भी पूरा घर में सेवा कर रहे हैं, घर का ख्याल रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, फिर भी पति बोले ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो क्या बोलना है? हाँ 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 हाँ। क्योंकि ये जो केमिस्ट्री बनाया भगवान ने परिवार जीवन का, वो ऐसा केमिस्ट्री है कि कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं होता उसमें, परिवार जीवन में पूर्ण संतुष्टि नहीं होता, अगर हो जाएगा तो फिर भक्ति में कैसे लगेंगे, है ना? तो इसलिए जो भी आर्थिक स्थिति है उसको स्वीकार करना है और ज्यादा समय श्रवण और कीर्तन में, जिससे अंत्य नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान श्याम सुंदर का रूप सामने आ जाए और मुंह से निकले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भगवान का अरेंजमेंट है कि कल शाम को मैंने क्लास में बताया था कि आज सुबह भागवतम में मैं कुछ तीन भक्तों के बारे में बोलूंगा जो पिछले एक महीने में जिन्होंने अपना देह त्याग किया। भगवान का अरेंजमेंट है कि आज का श्लोक उसी से संबंधित आ गया, क्योंकि आज का श्लोक मैंने अभी पढ़ा, मुझे पता नहीं था। तो अभी मेरे परिचित में जनवरी 12 और फरवरी 16 के बीच में तीन सिंसियर डिवोटीज महात्माओं ने अपना देह त्याग किया और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला केस जो है वो एक भक्त हैं जो पूना के पास रहते हैं, निगड़ी पास में, जो जब हमारा प्रचार शुरू हुआ इस्कॉन का निगड़ी में आज से 22 साल पहले, तो उस समय जो भक्त ब्रह्मचारी, एक्चुअली उस समय ब्रह्मचारी नहीं थे, जो बहुत ही सीनियर भक्त हैं राधेश्याम प्रभु और गौरंग प्रभु, वो वहां पर जॉब करते थे। उस समय वो एमटेक किया था उन्होंने और वो नौकरी कर रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो प्रभुपाद जी का संदेश घर घर में फैलाएं। वो चाहते थे किसी घर में भगवद गीता क्लासेस शुरू करें, तो घर घर जाके प्रयास कर रहे थे और एक घर में दरवाजा खोला उन्होंने और बोले आप आइए, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं। वो ऑलरेडी पहले से स्पिरिचुअल फैमिली से थे, आंध्र प्रदेश से, तो प्रभु जी का नाम बाद में दीक्षा के बाद नाम हो गया गोपाल आचार्य प्रभु और उनके पत्नी का नाम हो गया मुखारा माता जी। तो इतने सिंसियर डिवोटी रहे 20-22 साल से, और रात के 12 बजे भी अगर कोई भक्त आ जाए तो उनके लिए प्रसाद बनाने के लिए उत्सुक, विशेष करके माता जी के बारे में बोल रहा हूं मैं जिन्होंने देह त्याग किया। और माता जी इतने सिंसियर और हमेशा मुस्कुराते हुए सेवा करना, कई भक्त होते हैं सेवा करते हैं और क्या बोलते हैं थोड़ा रिलेक्टेंटली, यू नो, क्यों अभी हमें क्यों बोला, कोई और व्यक्ति नहीं है क्या, हमें क्यों डिस्टर्ब किया। तो माता जी की सेवा थी भगवान के लिए फूल माला बनाना और भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, और बहुत सिंसियरली वो सेवा को कर रहे थे, और ऐसे किसी को लगा नहीं था कि उनको कि उनका अंतिम समय आने वाला है। उनकी उम्र सिर्फ 63 वर्ष। और अचानक पिछले साल नवंबर में, कार्तिक महीने में, वो यात्रा में गए थे हम्पी और उडुपी, दक्षिण भारत यात्रा में, और वहां से वो लौट के आए, उनको थोड़ा बीमारी हुई, तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जब चेकअप कराने गए तब उनको पता चला कि उनको टर्मिनल कैंसर है, मतलब कैंसर डायरेक्टली फोर्थ स्टेज पे था, उस समय पहले डिटेक्ट नहीं हुआ। तो जब उनको उनको पता चला तो माता जी एकदम मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेना है, बस भगवान बुला रहे हैं, अभी मुझे जाना है। और मुझे बहुत, क्योंकि वो परिवार से मेरा काफी लगाव था शुरुआत स्टेज में, और मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया, वो बार बार मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अभी 6 महीने तक रहेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा से वो सिर्फ 1 महीना ही रहे। तो मुझे तब पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भक्त का आखिरी समय आता है तो तुरंत जाके हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं, वैसे तो किसी का भी समय आ सकता है, लेकिन अगर पता चले कि कोई भक्त को बीमारी हो गई है जिसके कारण अब उसका कोई इलाज नहीं है, तो हमें तुरंत उससे मिलना चाहिए। तो मैं फोन पर और माता जी से बात करता था, मैंने उनसे बताया कि ऐसे समय दुख हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि दुख की कोई बात ही नहीं है, दुख की क्या बात है, तो ट्रेन चल रही है, मेरा स्टेशन आ गया है, मुझे नीचे उतरना है बस। और जो भी भक्त उनसे मिलने आते उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, वो माता जी उनको भगवद गीता सुनाते थे, दूसरा अध्याय का श्लोक बताते हैं, देही नो अस्मिन यथा देही, दुख की क्या बात है, ये तो समय आना ही है, सबका आना है। और उनके बेटे अफ्रीका में जॉब करते, वो वहां से लौट के आए, उनके तीन, एक बेटा और दो बेटी हैं, तीनों दीक्षित भक्त हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, एक बंबई में है और एक अमेरिका में और एक अफ्रीका में। तो उनके बेटे अफ्रीका से लौट कर आए और वो तो अपने बेटे को बोलने लगे कि घर के सामने जो रोड है उसको रोक दो और सबको बुलाओ और भागवत कथा करो, उधर 10,000 लोगों को, और सबको भागवत सुनाओ और प्रसाद वितरण करो। ये माता जी को प्रसाद बना के वितरण करना बहुत अच्छा लगता। और तो हमने बताया कि अगर हम 10,000 लोगों को प्रसाद बांटेंगे, तो उनके बेटे बोलने लगे कि तो फिर पैसा कहां से आएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो माता जी बोली, कृष्णा विल गिव ट्रंक फुल, कृष्णा पूरा ट्रंक भर के देंगे, आप प्रसाद वितरण करो। तो जितना हो सके प्रसाद वितरण भी कराया। और फिर अचानक फिर एक महीने बाद ऐसा लगा कि उनकी हेल्थ बहुत खराब हो रहा है, तो बोले मुझे मंदिर जाना है। तो वहां पे जो डीटीज है, उनका नाम है राधा गोविंद देव गौरमिताई, बहुत सुंदर मंदिर है, वुड से बना हुआ, और भगवान के सामने उन्होंने एक फूल माला बनाई, सब भक्तों से मिले और फूल माला बना के बोले, अब मैं बहुत खुश हूं, मैंने सेवा की। फिर वो घर में लौट गए और दो तीन बाद उनको स्वप्न आया, और सपने में उनके गुरु महाराज स्वप्न में आए और उनको बोले कि आपने अभी अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, सारी जिम्मेदारी, बस अब चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी आपको बुला रहे हैं वापस भगवत धाम। तो उनके साथ स्वप्न आया और उन्होंने हमें बताया, तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं ये सपना सत्य है, क्योंकि आखिरी समय व्यक्ति का मन और शरीर ठीक से कार्य नहीं करता। तो ये 10 जनवरी को उनको स्वप्न आया। अगले दिन 11 तारीख को वो अपने बेटे को बोले कि अभी हम फिर मिलेंगे नहीं, ऊपर ही मिलेंगे बस, और वो 11 तारीख को रात को सो गए। सुबह 12 तारीख को उनको होश नहीं था, और बंबई से राधा गोपीनाथ मंदिर से एक सीनियर ब्रह्मचारी हैं, जिनका नाम है राधा गोपीनाथ प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर से राधा गोपीनाथ का संदेश लेकर आए। तो वो उन्होंने एक लेटर लेकर आए जो उनके गुरु महाराज ने लिखा था, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने, और वो लेटर बोले कि ये माता जी के लिए है, उनको पढ़ के सुनाना। तो वैसे तो बेहोश थे, लेकिन लेटर पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखें खुल गई, और वो लेटर में, पत्र में एग्जैक्ट वही शब्द थे कि आपने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी आपको आपस बुला रहे हैं। तो बस वो शब्दों को सुना उन्होंने, उनके आंखों में थोड़े आंसू आए और 15 सेकंड में उन्होंने देह त्याग दिया, वापस चले गए। तब मुझे ये पता चला कि ब्लेसिंग्स महाराज। तो इस तरह से मेरा इतना श्रद्धा बढ़ गई भक्ति में, मुझे बहुत गर्व था, अभी भी है, कि मैं प्रचारक हूं, 25 साल से प्रचार कर रहा हूं, सीनियर भक्त हूं, ब्रह्मचारी हूं, कोई मंगल आरती मिस नहीं करता, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के प्राप्ति के लिए एक सरल सेवा भावना की जरूरत है। जनरली हम सोचते हैं कि यह सेवा, फूल माला बनाना और ये प्रसाद बनाना, ये तो कोई भी कर सकता है, बड़ी नहीं है, प्रचार करना ज्यादा अच्छी सेवा है, पुस्तक बांटना अच्छी सेवा है, मैनेजमेंट करना अच्छी सेवा है। लेकिन इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सेवा क्या है, फर्क यह है कि फर्क इसी से पड़ता है कि चेतना क्या है। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम इस भाव से करते हैं कि मैं दास दास दासानुदास हूं, भगवान के सेवकों का सेवक हूं, त्रिनादपि सुनिश्चित भाव से सिंसियरली सच्चे दिल से करते हैं बिना अहंकार के, तो भगवान को हम प्रिय बन सकते हैं। देखिए तो भगवान के धाम में जो गोपियां हैं, वो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, वो मंजरी हैं, वो भी तो भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भगवान के धाम जाने के लिए IIT ग्रेजुएट होना जरूरी है ना। तो जो भी किसी भी स्थिति में हो, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और दूसरी बात मुझे सीखने को मिली कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका जीवन में अमल करना रियल चैलेंज है। मैं तो प्रवचन में तो हम 100 बार बोल चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, मरना मतलब कोई खाली शरीर का बदला करना है। लेकिन मान लो आज मेरा समय आता है, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे ऊपर, यू नो, मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे तैयारी करनी है, यू नो। और 60 एक्चुअली वो माता जी को कुछ विशेष कृपा थी, 2 साल पहले ही उन्होंने अपने बेटे से बताया था कि मैं 63 वर्ष तक रहूंगी, उसका एक भगवान की कृपा से कुछ आइडिया था, लेकिन और उनको एक बीमारी भी थी, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि हम अगले क्षण तक जी पाएंगे कि नहीं। हम प्लान करते हैं 2015 का, 2016 का, हम टिकट बुक करते हैं प्लेन के, ट्रेन के, लेकिन क्या गारंटी। और अंत समय में यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना प्रचार किया है, कितने आपके पैसे हैं, कितने लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं समाज में, इस्कॉन में, बस हृदय में स्थित परमात्मा है, वो परमात्मा आपकी सेवा से अगर प्रसन्न है तो आपका जीवन सफल है। अंते नारायण स्मृति। अब भगवान कहते हैं, खुरेश की कहानी में एक कहानी आती है रामानुजाचार्य के जीवन में, कि रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण को बोलते हैं अपने शिक्षा गुरु को, आप भगवान से पूछो कि क्या मुझे उनकी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो कांचीपूर्ण जाके भगवान भरद्वाज से प्रार्थना करते हैं कि पूछ रहे हैं कि उनको आपकी प्राप्ति होगी कि नहीं। भगवान बोलते हैं क्योंकि वो मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो उनको निश्चित मेरी प्राप्ति होगी। जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूं वो मेरा असली भक्त है। तो कांचीपूर्ण भगवान को रोज पंखा करते थे, भरद्वाज को चौवा डुलाते थे। तो उन्होंने पूछा भगवान से, अभी आपने बताया कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उसको मेरी प्राप्ति होगी, फिर मैं तो आपकी कर रहा हूं, मेरी होगी कि नहीं होगी। तो भगवान बोले, जो मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं उनका निश्चित है, लेकिन मेरी कर रहे हैं उसका कोई निश्चित नहीं है। आरएसी टिकट जैसे वेटिंग लिस्ट है ना। तो तुरंत तो कांचीपूर्ण सोचने लगे कि मैं क्या फायदा है, भगवे कपड़े पहनते हो। थोड़े दिन के लिए वो सब भक्तों को प्रसाद सेवा करना चाहते थे, अगर वो प्रसाद सेवा करेंगे तो सब रोक देंगे, अरे आप तो बहुत सीनियर भक्त हो। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन के लिए कपड़े बदली किए और दूर एक जगह पे जाकर सफेद कपड़े पहनकर सबको सर्विंग करने लगे कुछ दिनों तक। और एक दिन रात में बहुत बरसात हो गई और सारे कपड़े भीग गए, तो उन्होंने फिर अपने कपड़े, वो जो असली कपड़े थे वो पहने थे एक दिन, और फिर सब भक्तों ने पहचान लिया, अरे आप तो इतने महान भक्त हो, आप इतने सीनियर वैष्णव हो, आप ये क्यों कर रहे हो। बोले, मुझे भगवत धाम जाना है, फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई बताए कि आपको ये जगह पे एंट्री करना है, आपको अलाउ किया जाएगा अगर आप ये कलर के कपड़े पहनो, तो आप वो पहनने के लिए तैयार हो जाओ। हमें एंट्रेंस भगवान के धाम में एंट्रेंस गेन करना है तो त्रिनादपि सुनिश्चय ना भाव को ग्रहण करना है, चाहे आप कोई भी आश्रम में। तो रामानुजाचार्य के जीवन से एक सीखने को मिलता है। ऐसी और एक घटना हुई, वो माता जी के जाने के बाद 10 दिन बाद मुझे गोवा से फोन आया, वहां पे मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, उनको भी कैंसर हो गया था, और वो 16 माला जप करते और मंदिर में जो मंदिर के कार्य के लिए साल में एक बार डोनेशन कलेक्शन के लिए बहुत मदद करते। प्रभु जी को दीक्षा भी नहीं हुई थी, उनके पत्नी की दीक्षा हो चुकी थी मधुमालती माता जी, और प्रभु जी को कैंसर हो गया। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, एक्चुअली मैं गया था किसी दूसरे काम से, और फिर ये अक्टूबर में मिला मैं उनसे, अक्टूबर में 3 महीने पहले। मुझे लगा कि ये तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जनवरी में मुझे फोन आया कि उनके स्वास्थ्य बहुत खतरे में है। तो किसी कारणवश मुझे फ्लाइट की टिकट नहीं मिल पाई तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनको भगवान ने बहुत ही मंगलमय समय में वापस अपने पास लिया। 24 जनवरी को वसंत पंचमी का दिन था, शायद आप जानते हैं वसंत पंचमी, जब 5 आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस, विष्णु प्रिया देवी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर, पुंडरीक विद्यानिधि, और वो भी सुबह के समय मंगल आरती के जस्ट समय, जब ब्रह्म मुहूर्त के समय। अरे प्रभु जी आखिरी समय उनको एक स्वप्न आया, उनको स्वप्न में उनके गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद दोनों आए और उनको बोल रहे थे कि अगर एक बार भी आपने हरि नाम लिया है तो आपका जीवन सफल है, कोई एक बार भी सच्चे दिल से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी अगर किसी ने सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया है तो उसके भगवान की प्राप्ति। और ये भक्त जिनको स्वप्न आया, उन्होंने कभी शास्त्र भी ज्यादा पढ़े नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो बेसिकली यू नो वो बिजनेस जॉब में बिजी रहते थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे थे तो भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की, अंत समय में उनको भगवान के ये विचार है। और तीसरा केस मायापुर में हुआ, जिला जयपतक स्वामी महाराज के एक शिष्य, एक माता जी है मनोरूपा माता जी, उनके पति का नाम प्रहलाद नरसिंह प्रभु। तो माता जी को भी कैंसर हो गया और ये बहुत मतलब इतना था कि शरीर में इतना कष्ट था, और उनके गुरु महाराज जयपतक महाराज वो दिल्ली में थे और उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था गुरु महाराज का, तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट चालू था लीवर का प्रॉब्लम। तो माता जी ने लेटर लिखा अपने गुरु महाराज को कि मैं अभी ये शरीर छोड़ना चाहती हूँ। गुरु महाराज बोले नहीं आप रुको, मेरे आने तक वहीं पे रुको। तो माता जी कष्ट सहन कर रहे थे और फिर जयपतक स्वामी महाराज आए फरवरी के महीने में, दो महीने बाद। और जितने दिन वो दिल्ली में थे तो उनको रोज फोन के ऊपर गौरंग महाप्रभु की लीला सुनाते थे। ये गौरंग महाप्रभु की लीला बहुत सरल है कि निमाई है, रो रहे हैं, और जब माताएं हरी हरी बोलते हैं तो रोना बंद कर देते हैं, निमाई सांप से खेल रहे हैं। ये सब लीलाएं बहुत सरल हैं लेकिन ये बहुत शक्तिशाली भी हैं। जैसे होम्योपैथिक दवाई होता है, बहुत मीठी मीठी गोली होती है लेकिन बीमारी को दूर करने वाली। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे ये दवाई का क्या फायदा, मीठी मीठी गोली है, जब कोई इंजेक्शन लगाए दो चार और फिर 5,000 रुपये का बिल लगाए तो बहुत अच्छा डॉक्टर मानते हैं ना। लेकिन वही कार्य जो है मीठी मीठी गोलियों से भी हो सकता है। तो गौर लीला मीठी मीठी गोलियों की तरह, पता ही नहीं चलता और कभी कोई कॉस्ट भी नहीं लगता, लेकिन भाव रोग को दूर करने वाली। जब जयपतक महाराज मायापुर में आए तो सीधे मंदिर भी नहीं गए, अपने कमरे में नहीं गए, और अपने शिष्या को आखिरी समय मिलने के लिए गए। काफी समय तक बातचीत किए और उनके साथ तो कथा सुनाए। ये हो गया 7 फरवरी को, और दो दिन बाद मैंने सोचा, क्योंकि सब सन्यासी गृहस्थ सब मिल रहे थे उनसे, उनको मतलब मैं भी मिलने जाऊं, मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन दरवाजा खोला उनके पति थे तो मुझे पता चला ये वही हैं जो 20 साल पहले अमेरिका में हमारे साथ थे, प्रहलाद नरसिंह प्रभु। तो देख के बहुत खुश हुए, और जब मैंने कुछ से बातचीत की तो बोले मेरे पत्नी जो है अभी वो शरीर छोड़ने वाले और वो वेट कर रहे थे जयपतक महाराज के लिए, उनसे मिल लिए। लेकिन साथ साथ उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो बहुत सारे गौर लीला लेक्चर सुनते हैं राधानाथ महाराज के, तो उनकी इच्छा थी कि वो आपके गुरु महाराज से मिलना चाहते थे। और मैं सोच रहा था कि कैसे बुलाऊं, और शायद भगवान ने आपको भेज दिया। तो फिर मैंने जाके परम पूज्य राधानाथ महाराज से निवेदन किया। तो जीबीसी मीटिंग्स में इतने बिजी होते हैं तो समय नहीं होता, लेकिन फिर भी महाराज जी उनसे मिलने गए। महाराज जी को याद था कि 20 साल पहले ये दोनों प्रहलाद नरसिंह प्रभु और उनके वाइफ अमेरिका में न्यू वृंदावन में आए थे और सेवा की थी। तो महाराज उनसे मिले और 20 मिनट तक उनको याद दिला रहे थे कि आपने कितनी अच्छी सेवा की और भगवान आपको अभी बुला रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। बस ये होने के बाद दो दिन बाद 16 तारीख को द्वादशी का दिन था, पिछले महीने 16 फरवरी द्वादशी का दिन था, जब कीर्तन मेला जस्ट शुरू हुआ था और एकादशी के दिन पूरा दिन कीर्तन हो रहा था। और एकादशी की रात्रि को वो माता जी भगवान को याद कर रहे थे, दर्शन मतलब राधा माधव का दर्शन के। और सुबह का समय हुआ, दर्शन आरती मतलब मंगल आरती हुई और बिल्कुल परफेक्ट है। मंगल आरती के बाद तुलसी पूजा के समय उन्होंने भगवान को याद करते हुए अपना देह त्याग किया। ये जो पिछले 12 जनवरी से 16 फरवरी करीब 35 दिन के बीच में 3 भक्तों को मैंने देखा कैसे उन्होंने देह त्याग किया, तो मुझे बहुत विश्वास बढ़ गया कि ये जो प्रभुपाद जी का फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि, हालांकि मुश्किल है भगवान को याद करना, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान ऐसे भक्तों को असंभव कार्य नहीं देंगे, हमें भी आशा है। अगर हम जस्ट ध्यान पूर्वक 16 माला जप करते हैं और जो भी सेवा हम कर सकें अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं तो कृष्ण मदद करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे 16 माला है वो हम अटेंटिवली करें, पुकारते हुए करें, हर मोती पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को याद करते हुए प्रार्थना करें कि हे गौरंग नित्यानंद, प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, मुझे भवसागर से बाहर निकालो, मुझे हरि नाम का आश्रय दो, मुझे वैष्णव की सेवा दो। और किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना, क्योंकि सभी भगवान को प्रिय हैं। इवन अर्जुन और भीम में भी आपस में झगड़े होते थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन और भीम हमेशा मीठे मीठे मतलब प्रेम का संबंध था, लेकिन मतभेद होता था, लेकिन फिर भी वो साथ में रहते थे। ऐसे इस्कॉन में भी हमसे एक बड़ा परिवार है, और जितना बड़ा परिवार होगा उतना मतभेद भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद को केंद्र में रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अंत में वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो आज के श्लोक में लिखा है, अंते नारायण स्मृति। और लास्ट में सबसे अच्छे उदाहरण कैसे अंतिम समय भगवान को याद करना है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण चैतन्य चरितामृत में दिया गया और वो है हरिदास ठाकुर का। जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, एक पेड़ है जिसको सिद्ध बकुल कहते हैं, उस पेड़ के नीचे रहकर वो जप करते थे और भगवान ने आदेश दिया था कि आप चक्र को देखो, जगन्नाथ जी के चक्र को देखकर भगवान का नाम जप करते रहो। हरिदास ठाकुर रोज 192 माला जप करते, और एक दिन वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े, तो चल नहीं पा रहे थे, लेटे हुए थे, और धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे वो कुछ महाप्रसाद लेकर आए, बोले हरिदास ये लो महाप्रसाद। हरिदास बोले महाप्रसाद, मेरा तो जप पूरा नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर 192 माला जप करने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते थे या पानी पीते थे। हमारा क्या होता है कई बार चार माला हुआ, फिर ब्रेकफास्ट चार माला, लंच फिर चार माला, डिनर और बेडरूम में चार माला। ऐसे यहाँ वृंदावन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह पर होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 16 माला पूरा करें, उसके बाद ही कोई पानी ग्रहण करें। और वृंदावन के लिए 16 माला बहुत कम है। वृंदावन में जो भक्त रहते हैं उनको कोशिश करना चाहिए 20 माला करें, 25 माला करें। नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एक्स्ट्रा जपा करने से। नहीं, बाकी दवाइयां ज्यादा ले ली है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन हरि नाम कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो हरिदास ठाकुर बोले मेरा जप पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे ग्रहण करूं। लेकिन जब आप लायो महाप्रसाद, तो उन्होंने एक दाना ले लिया और फिर अगले दिन महाप्रभु खुद आए, बोले हरिदास सुस्वस्थ हो, आर यू ऑलराइट, क्या आप ठीक ठाक हो। और हरिदास ने जवाब दिया, शरीर स्वस्थ है मन बुद्धि अस्वस्थ है। मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं। महाप्रभु बोले कौन व्याधि है ला, क्या बीमारी हुई। और हरिदास बोले संख्या कीर्तन पूर्ण न है, मेरा जप पूरा नहीं हो रहा। प्रभुपाद लिखते हैं अगर किसी भक्त को 16 माला जो भी उसका कोटा है वो पूरा करने में बोझा लग रहा है, इसका मतलब वो अभी आध्यात्मिक रूप से बीमार है। तो प्रभु ने कहा तुम ऐसे करो, तुम बूढ़े हो गए, थोड़ा कम कर लो, तुमने साधना बहुत कर ली। अभी हमें कोई बोले प्रभु जी आप कम है, चलो आपका बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती, चलो 12 कर लो। गुरु महाराज बोल दे, बोले कितना अच्छा, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा, मैं तो सोच ही रहा था। लेकिन हरिदास बोले मैं जपा कम नहीं कर सकता, लेकिन अब ये मेरी एक ही निवेदन है, आपने मुझे कितना ऊपर उठा लिया। मैं यवन परिवार से जन्मा था और आप इसे कौवे को ऐसे गरुड़ बना देते हैं, वैसे मेरे को इतनी ऊंची सिद्धि दिला दी। एक्चुअली भगवान मैं तो अयोग्य हूं, अद्वैत आचार्य के घर में ब्राह्मण भोजन था, तो प्रथम भोजन आपने मुझे ही दिलाया। मेरे मन में एक ही इच्छा है प्रभु, मुझे मालूम है आपके अंतिम लीला का समय आ गया है, इसके पहले कि आप धरती छोड़कर जाएं मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं और किस तरीके से आपके चरणों को छाती पे धारण करूंगा और आंखों से आपके मुख कमल का अवलोकन करूंगा और जीभ से मैं पुकारूंगा श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। हरि चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उनको दुख लगा, बोले हरिदास हरिदास तुम्हें जे मांगीब कृष्ण अवश्य करीब, जो आप मांगोगे कृष्ण जरूर करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा, मैं धरती पे आया हूं आप जैसे भक्तों के साथ लीला करने के लिए, अगर आप चले जाओगे तो मेरे धरती पे आना क्या लाभ होगा। हरिदास भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मजाक मत करिए, आपके पास इतने बड़े भक्त हैं, राय रामानंद स्वरूप दामोदर, बड़े बड़े वैष्णव हैं, एक चींटी की मृत्यु हो गई तो क्या नुकसान हो जाता है। हे प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ हूं, आपका नाम है भक्त वत्सल, मैं तो भक्त भी नहीं हूं, मैं भक्ताभास हूं, मैं नकली भक्त हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी इच्छा को पूरी करो। अगले दिन महाप्रभु पूरे टोली को ले आए, भक्तों के समूह को, वक्रेश्वर पंडित स्वरूप दामोदर, और पूछा हरिदास क्या इच्छा है। हरिदास ने कहा प्रभु आप जो कृपा करें वही मुझे स्वीकार है। कीर्तन शुरू हुआ, वक्रेश्वर पंडित डांस करने लगे, स्वरूप दामोदर गाने लगे और सारे भक्त रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने चैतन्य महाप्रभु हरिदास का गुणगान करने लगे। हरिदास गुण कहिते प्रभु है पंचमुख, महाप्रभु ऐसे बोलने लगे जैसे उनके पास पंचमुख, कहते कहते प्रभु बाड़े महासुख, महाप्रभु को और सुख होता जा रहा था। और फिर उस समय हरिदास ठाकुर ने सब डिवोटीज के चरणों की धूल ली और भगवान के चरणों को अपने हृदय पे धारण किया। जैसे काला भंवरा जो है फूल की तरफ आकर्षित होता है, वैसे उनके काले नयन जो है भगवान के सुनहरे मुख कमल की ओर अवलोकन करने लगे और वो जीवा से बोलने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया। महाप्रभु उनके शरीर को लेकर नृत्य करने लगे बहुत देर तक। बाकी भक्तों ने बताया कि समय हो रहा है, प्रसाद का भी हो रहा है, बस 5 मिनट में एंड करूंगा, समय हो रहा है प्रभु दूसरे सेरेमनीज भी करने। तो फिर महाप्रभु बोले चलो हम कीर्तन करते हुए जाएंगे। हरिदास के शरीर को एक पालकी में रखा गया जो दिखने में विमान की तरह था और सब भक्त कीर्तन करते समुद्र के किनारे गए और वहां पर जो इलाका है स्वर्गाश्रम बोलते, स्वर्ग स्वर्ग द्वार बोलते हैं, वहां पर हरिदास के देह को समुद्र के जल से स्नान कराया गया और महाप्रभु और सारे भक्त वो चरणामृत पीने लगे। महाप्रभु ने घोषणा किया कि आज से समुद्र जो है महातीर्थ हो गया। अभी तक समुद्र को तीर्थ मानते हैं क्योंकि सारे नदियां समुद्र में आते हैं, लेकिन जब हरिदास के देह को स्नान कराया गया तब वो महातीर्थ हो गया। मतलब भक्त के महिमा जो है गंगा यमुना और सारे नदियों से भी ज्यादा है। जहां पर एक शुद्ध भक्त रहते हैं वही वृंदावन है, वही मायापुर है, वही जगन्नाथपुरी। और वृंदावन में आप जैसे शुद्ध भक्त रहते हैं तो और भी सोने में सुहागा है ना। जहां पर वृंदावन में वैष्णव का संग करना इससे बढ़कर क्या हो सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु उनकी समाधि की तैयारी करने लगे। थोड़ा सा गड्ढा खोदा गया और हरिदास के दिव्य देह को नीचे रखा। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय की रस्सी, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद, जगन्नाथ के फूल मालाएं और ये सब चीजें हरिदास के दिव्य देह के ऊपर रखे गए। फिर सारे भक्त हाथ में मिट्टी लेकर समाधि बनाने लगे और मिट्टी डालते हुए बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु ने फिर हरिदास की समाधि की प्रदक्षिणा की और स्वयं अपने हाथों से अपनी चादर फैलाकर दुकान दुकान पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। आज आज मैं हरिदास ठाकुर के लिए भिक्षा मांग रहा हूं। और सारे दुकानदार टोकरी भरकर प्रसाद दे रहे थे और महाप्रभु बोले, नहीं नहीं इतना नहीं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले, इतना नहीं मत दीजिए महाप्रभु, आपके लिए भिक्षा मांगना ठीक नहीं है, कोई और भक्त करेंगे। 4 भक्तों को सेवा दी गई और सारे भक्त वो प्रसाद एकत्र करके सबको लाइन में बिठाया। महाप्रभु बोले, मैं अपने हाथों से परोसूंगा। और सब भक्तों को लाइन में बिठाकर महाप्रभु परोसने लगे। महाप्रभु हस्ते अल्पनाय ऐसे एक एक पतलेर पंचजन परोसे। महाप्रभु के हाथ में अल्प नहीं, एक एक पतल में 5-5 लोगों का प्रसाद सर्व कर रहे थे। ऐसा आज हमें खाना चाहिए मानसिक रूप से। और फिर महाप्रभु सबको प्रसाद खिलाने के बाद सबको बोले, आकंठ कराया भोजन। जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं आधा पेट खाना चाहिए, फीस्ट हो तो पूरा पेट, लेकिन हरिदास ठाकुर के दिन आकंठ मतलब गले तक। और सब भक्तों को भोजन कराने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने हर एक भक्त को माला पहनाई, चंदन लगाया और घोषणा की, आज आज जिसने भी समारोह में भाग लिया, जिसने भी हरिदास ठाकुर के तिरोभाव को देखा, जिसने भी समाधि बनाने में मदद की, जिसने भी प्रसाद एकत्र करने में मदद किया, जिसने भी प्रसाद ग्रहण किया, उन सबको कृष्ण की प्राप्ति होगी। अंत में हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण बहुत दयालु है, उन्होंने हरिदास ठाकुर का संग दिया, ये मेरा भाग्य था, लेकिन आज वो संग से मैं भंग हो गया। जब हरिदास की इच्छा हुई भगवत धाम जाने की तो मेरे अंदर शक्ति नहीं थी कि मैं उसको रोक सकूं। आज धरती एक शिरोमणि वैष्णव के संग से निवृत्त एक दुख होने लगा कि एक भक्त का संग नहीं मिल रहा। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, सब गाय जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जे कोरिल प्रकाश। सब लोग बोलने लगे, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। क्यों बोले जय जय हरिदास? नाम मेर महिमा जे कोरिल प्रकाश, जिन्होंने नाम की महिमा को प्रकाशित किया। और अंत में लिखते हैं कि यही तो कहिलो हरिदास रविजय, जाहर श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। ये हरिदास की तिरुभाव कहानी सुनने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति मिलती है। और क्या प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं यहां पर कि हरिदास को परम विद्वान बोला गया। हरिदास ज्यादा बड़े पंडित नहीं थे, विद्वान मतलब वो नहीं जिसने बहुत बड़े डिग्री प्राप्त किए हैं और भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव पढ़ा है, ये सब तो करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान वो है जो शुद्ध रूप से हरि नाम ले सकता है। हम दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें गुरुदेव से, प्रभुपाद से, हरिदास ठाकुर से, कि हम भी इस तरीके से अंत समय में भगवान के चरणों को याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भक्तों की संगति में अपने प्राण को त्याग कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम Thank you.